ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपां सार्वजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानमस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आज हम इन दो सेशन में कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। एक तो है कि दीक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है और क्यों एक व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए और क्यों हमें आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता अपने जीवन में है और गुरु को किस प्रकार से समझना चाहिए, एक शिष्य को या किस दृष्टि से आध्यात्मिक गुरु को देखना चाहिए। तो ये सब गुरु के बारे में हो गया, लेकिन फिर दूसरी चीज है जो गुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहता है उसकी भी क्या है, योग्यताएं। शिष्य के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो जो भी मैं चर्चा करने जा रहा हूं ये सारी चीजें आपने कई अलग अलग लेक्चर्स में सुनी हैं, लेकिन मैंने उनको एक जगह डाला है और प्रयास करेंगे उसको एक सीक्वेंस में समझने का। तो क्योंकि जो दीक्षा है ये बहुत बड़ा कदम है मनुष्य जीवन में, और दीक्षा ग्रहण करने का जो कदम केवल बुद्धिमान व्यक्ति उठाता है, मूर्खों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में वर्णन आता है, यज्ञ संकीर्तने प्रायः यजन्ति हि सुमेधसा। गीता में कृष्ण ने कई बार ये शब्द यूज किया है, मेधा कहते ना छात्र, मेधावी छात्र होता है, मतलब जो बहुत कुशल है, दक्ष है, एक्सपर्ट है। तो उसी प्रकार से जो एक दीक्षार्थी है, जैसे विद्यार्थी कहते हैं वैसे हम क्या है, दीक्षार्थी है, दीक्षा चाहते हैं, जो विद्या चाहता है या विद्या स्वीकार कर रहा है वो विद्यार्थी है। तो उसी प्रकार से हम भी इस विद्या या दीक्षा को सही रूप से समझते हैं तो हम सही ढंग से भक्तिमय जीवन में अग्रसर हो सकते हैं। तो भगवान भगवद गीता में वर्णन करते हैं 15वें अध्याय में, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। तो दीक्षा की शुरुआत यहां से होती है, सबसे पहले अपने पोजीशन को जानना। इसलिए भगवत गीता में अर्जुन शरणागत होता है तो कृष्ण ने सबसे पहले कुछ सिखाया, तो वो क्या सिखाया, तुम ये शरीर नहीं हो। तो एक जो साधक है उसको सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि ममय वंशो जीव लोके जीव भूता सनातनः मन शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। संघर्ष, ये शब्द सुना है, संघर्ष, संघर्ष हमारे हमेशा यहां बैठना चाहिए शब्द। ये भौतिक संसार हर समय जिसके दिमाग में है संघर्षमय है, वो व्यक्ति वास्तव में दीक्षा के लिए कदम उठा सकता है गुरु की ओर। तो भगवान कहते हैं कि ममे वांश, ये जो जीव मेरा अंश है, ठीक है भगवान का अंश है, लेकिन हम बहुत लंबे समय से भगवान से क्या हो चुके हैं, अलग हो गए हैं। कोई आपको प्रश्न करे कब से हम भगवान से अलग हो गए हैं, तो क्या बताएंगे आप, कितने साल हो गए आपको भगवान से अलग होकर? हाँ, तो उसके लिए भगवान कहते हैं अनादि बहिर्मुख जीव। कब से ये विरह सेपरेशन कब से शुरू हुआ है? अनादि, जिसका कोई आदि नहीं है, टाइम आप काउंट नहीं कर सकते। अनादि बहिर्मुख जीव, बहिर्मुख फेस इधर कर दिया। दीक्षा मीन्स क्या करते हैं गुरु, आपका फेस घुमाते हैं किसकी ओर करते हैं, कृष्ण की ओर। तो गुरु मीन्स जो व्यक्ति आपके हृदय में कृष्ण की सेवा की भावना को जागृत करने करता है वो वास्तव में आध्यात्मिक गुरु है। सिंपल डेफिनेशन है, शास्त्र कहते हैं। तो यहां अनादि बहिर्मुख जीव भूतवांछा करे निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। अनादि काल से हम अलग है कृष्ण से, क्यों? क्योंकि हम कृष्ण के संग में नहीं रहना चाहते, हम कृष्ण से अलग होकर भोग करना चाहते हैं। हाँ, तो जो भगवान की सबसे करीब और बेस्ट डिवोटी एक है वो कौन है, माया देवी है। मैं अभी प्रभु जी को बता रहा था, वो मुझे कह रहे थे कि मैं माया को धोखा देने में एक्सपर्ट हूं। मैंने कहा आप खुद इल्यूजन में हो, जो कहता है कि माया को मैं चकमा दे सकता हूं, मैं बहुत एक्सपर्ट हूं, वो सबसे बड़े इल्यूजन में है, अज्ञानता में है, भ्रम में है। तो मैंने कहा कृष्णा की बेस्ट डिवोटी है कौन, माया। इसलिए भगवान, देखो आप किसी को अपना शब्द कब यूज करते हो, जिनसे आप प्रेम रखते हो। इसलिए भगवान भगवत गीता में माया के लिए कहते हैं मम माया, क्या कहते हैं, मेरी माया। हम कहते ना मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरी कार। तो भगवान कहते आपको कोई अपना कहकर पुकारता है तो आपको महसूस होता है ना कि मैं क्लोज हूं उस व्यक्ति के। तो भगवान कहते ये माया किसकी है, हाँ मम कहा भगवान ने। हम भी संसार में अहम और मम इसमें फंसे हुए हैं। तो मैंने उन डिवोटी को बोला कि आप सावधान रहो कि माया को कभी भी आप चकमा नहीं दे सकते, ये आपका अज्ञान है, इल्यूजन है। तो माया तभी हमें पकड़ती है जब हमारी अपनी वास्तविक स्थिति को हम बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा आपकी स्थिति क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो एक 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 शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है एक एक शिष्य के लिए, ये जानना कि महाप्रभु के शिक्षाओं का सार क्या है। महाप्रभु ने सिखाया जीव की पोजीशन है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ऐसे नहीं कि कभी कभी दास, या दीक्षा से पहले नित्य दास, मंदिर आना, सेवा करना, प्रणाम करना, हाथ जोड़ना, दीक्षा होने के बाद सीना चौड़ा और फिर कहना कि कभी कभी मैं दास हूं, ऐसे देखा जाता है जनरली। लेकिन नहीं, महाप्रभु क्या कहते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो शास्त्रों के कुछ कुछ शब्द हमें हमेशा हमारी स्थिति को रिमाइंड करते हैं, फिर हम विचलित नहीं होते अपने लक्ष्य के प्रति। इस कारण से फिर जब हम अपनी नित्य कृष्णदास भावना को भूलते हैं तो फिर हम दुख का अनुभव करने लगते हैं। तो आत्मा भगवान का शाश्वत सेवक है और यदि उसका स्वरूप है आनंदमय अभ्यासात, वो आनंद चाहता है और आनंद कैसे चाहते हैं, हम शरीर की सेवा कर परिवार आदि की सेवा करके इंद्रियों की सेवा करके आनंद को चाहते हैं और आनंद प्राप्ति की भूख कभी खत्म नहीं होती, ये याद रखना चाहिए। इस संसार में हम आनंद अनुभव करते हैं प्रेम के कारण, है ना, जहां प्रेम है वहां क्या है, आनंद है। तो आनंद प्राप्ति की जो भूख है प्यास है ये कभी भी खत्म नहीं होती, इसलिए कहते हैं इसको अतोषणीय प्यास। अतोषणीय मतलब कभी भी खत्म नहीं होने वाली। तो इस प्रकार से हम इस शरीर के द्वारा इंद्रियों के द्वारा आनंद अनुभव करना चाहते हैं और इतने आसक्त हो जाते हैं और अंधे हो जाते हैं। और फिर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं जब ऐसा जीव पागल हो जाता है भौतिक सुख के लिए तो उसकी स्थिति क्या होती है, अपश्यताम आत्म तत्वम ग्रहेशु ग्रह मेदिना, फिर उसको कुछ दिखाई नहीं देता, आत्म तत्व के बारे में इंटरेस्ट नहीं होता उसे। और फिर ग्रहेशु ग्रह मेदिना, ग्रह मेधी, मेधा में फिर से यह मेधा शब्द यूज हुआ है। हाँ, पहले क्यों मैंने मेधा शब्द यूज किया था, दीक्षार्थी के लिए, सुमेधसा, जो भी कृष्ण भक्ति में लगा है भागवतम कहता है वो क्या है, सुमेधा है, सुमेधा में सबसे बुद्धिमान। और यहां शब्द यूज किया है ग्रह मेधी, मतलब जिसकी बुद्धि केवल अपने घर में ही रममान है, वो छोटे से बॉक्स से बाहर वो सोच ही नहीं सकता, उसको ग्रह मेधी कहते। क्यों, क्योंकि वह इंद्रिय तृप्ति के साधन है। तो जो इंद्रिय तृप्ति के साधनों में बॉक्स में रहना चाहता है, उनका उपभोग करना चाहता है, उसके लिए गुरु का शेल्टर कठिन है, उसके लिए नहीं है। तो फिर व्यक्ति जब भौतिक आसक्ति से अंधा होता है तो फिर आत्म तत्व को नहीं देख पाता और फिर निश्चित रूप से वो भूल जाता है। इसी कारण से यदि हम वास्तव में कृष्ण की ओर रफ्तार से दौड़ना चाहते हैं, एक शिष्य, एक भक्त, एक साधक, तो उसको प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं पढ़नी चाहिए। किसकी शिक्षा, आपके शरीर में रोमांच खड़े हो जाएंगे, छोटा सा 5 साल का बालक क्या क्या बोल रहा है और उन्होंने सब चीजें बताई हैं, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु या फिर भौतिक व्यक्ति के बारे में। तो उसमें वो कहते हैं कि ये जो शरीर है वो इंद्रिय तृप्ति का एक व्हीकल है, वाहन है, कार है, और इस इंद्रिय तृप्ति के व्हीकल से ही हम क्या करते हैं, जीवन भर इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति मतीर्ण कृष्णे परतो सुतोवा मिथो विपद्यत ग्रह व्रतानाम अदांत गोभीर विशिताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम, तो वो कहते हैं कि कोई ऐसे व्यक्ति इस संसार में है जिनका मति न कृष्ण, उनकी मति कभी कृष्ण में नहीं लग सकती। गुरु क्यों चाहिए हमें अपने जीवन में, क्यों चाहिए, कृष्ण में मति लगने के लिए, किस लिए चाहिए, कृष्ण में हमारा मति लगे। इसलिए जो महान महान आचार्य है, चैतन्य महाप्रभु जब सारम भट्टाचार्य से मिले तो सारम भट्टाचार्य आशीर्वाद की मां कामना कर रहे थे तो महाप्रभु ने क्या कहा, कृष्णेर मति रस्तु, कि आपका मन किसमें लगे, कृष्ण में। और यही कृष्ण भावना का सार है, हमेशा कृष्ण का स्मरण हो और कभी भी हम कृष्ण को ना भूले। और ये कौन करवाता है हमसे, आध्यात्मिक गुरु करते हैं। तो आगे हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। तो इसी कारण से शास्त्र कहते हैं मति न कृष्णे परतो सुतोवा, मति कृष्ण में नहीं लगती उस व्यक्ति के जो स्वयं चाहे प्रयास करे या दूसरे जितने मर्जी उपदेश दे या फिर दोनों चीजों का मिलाप हो, तो भी ऐसे लोग हैं जिनका मति कृष्ण में नहीं लगता। क्यों, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया है, मिथो भी प्रदेत ग्रह व्रतानाम, उनको नशा चढ़ा हुआ है इंद्रिय तृप्ति का। किस चीज का? हमें कृष्ण का स्मरण कम होता है, हम सोचते हैं कि अधिक से अधिक स्मरण होना चाहिए कृष्ण का। तो जितना इंद्रिय तृप्ति का नशा हमारे इंद्रियों में होगा उतना कृष्ण का स्मरण हमसे नहीं होगा, ये निश्चित है। आंखों को एक एडिक्शन है, नशा है, जीवा को है, स्पर्श इंद्रियों को है, कान को है, नाक को है, तो इनको भौतिक तृप्ति की जब नशा होगी तो कृष्ण का स्मरण असंभव है। और इसी कारण से उस नशा की पूर्ति के लिए व्यक्ति पुनः पुनः जो जो इंद्रिय तृप्ति की है फिर से उसी को ही करना चाहता है, और फिर क्या करता है, कृष्ण को भूलने लगता है। और वो सबसे बड़ा उस व्यक्ति का लॉस है, एक डिवोटी का। इसी कारण से प्रहलाद कहते हैं, नमे विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशयाय बहिरार्थ मानिना, कि ऐसे व्यक्ति का जो स्वार्थ कृष्ण है वो उसको भूल जाते हैं, और बाहर जो दुराशा, जो इच्छाएं अच्छी नहीं है, भोग करने की इच्छाएं अच्छी है क्या? नहीं है। तो गुरु का एक मतलब यही है कि जो व्यक्ति भोग भावना को कन्वर्ट करता है सेवा भावना में, उसको क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। सारा खेल यही है, एक जीव के अंदर ठूस ठूस भर के, ठूस ठूस भरा हुआ है, ठूस ठूस के भरा हुआ है भोग भाव, उसको गुरु क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। किस भावना में? सेवा की भावना में। दुराशयार ये बहिरर्थ मानिना अंधा यथांधे रूपणीय माना से तंत्र्या गुरुदाम बद्धा। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि व्यक्ति अंधा हो जाता है और इस भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधता है, फिर हमारी स्थिति उस मकड़ी के समान होती है जो अपने मुंह से लार निकालती है और क्या बनाती है, जाल या धागा बनाती है। हाँ, उस मकड़ी का उदाहरण प्रहलाद महाराज ने दिया है। और फिर उसके उससे अटक जाती है, बाहर आना उसके लिए मुश्किल होता है और उसके अंदर ही मर जाती है। तो हमारी स्थिति वैसी है, तो उस सिचुएशन से हमें बाहर निकलने के लिए हमें कौन चाहिए? आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि हमने इतनी प्रकार से अपने आप को बांध डाला है, मतलब हम एक ऐसे कुएं में गिरे हैं कि हम स्वयं नहीं निकल सकते। एक व्यक्ति चाहिए जो ऊपर से रस्सी फेंके फिर उसको आप पकड़ के बाहर आ सकते हो, और उसको कहते गुरु। और वो रस्सी क्या है? उनके इंस्ट्रक्शन, उनके उपदेश। जिसने भी उस रस्सी को पकड़ा है वही भक्त बाहर आ सकता है। और हम कहेंगे अरे वो बाहर जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, लेकिन हम जितना कस के रस्सी पकड़ोगे उतना ही तेजी से आप बाहर निकलोगे, अन्यथा असंभव है। इसलिए जो भक्त है उसको ये जानना चाहिए कि शरीर माध्यम है इस धर्म को समझने के लिए। ये सब चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब तक ये नहीं हमारे दिमाग में घुसेगा तब तक हम गुरु की पोजीशन को नहीं समझ सकते। भागवतम में क्लियर कट कहा है कौन व्यक्ति अधिकारी है गुरु के पास जाने का। तो भागवतम कहता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, शरीर को भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए और शरीर से हमें आसक्त भी नहीं होना चाहिए पागल व्यक्ति की तरह, क्योंकि जानना चाहिए कि यह शरीर क्या है, कृष्ण प्रदान करने के लिए एक साधन है। इसलिए प्रहलाद कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। वो कहते मनुष्य जीवन दुर्लभ है और ये मनुष्य जीवन अध्रुवम मतलब बहुत टेम्पररी है, फिर उसके बाद एक शब्द यूज करते हैं अर्थदम मतलब सबसे बड़ा हित, सबसे बड़ा गिफ्ट, भेंट ये शरीर आपको दे सकता है, और वो क्या है? कृष्ण प्राप्ति। हाँ, तो ये शरीर माध्यम है, इसलिए भागवतम कहते हैं कि लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम् बहु संभवान्ते, बहुत जन्मों के बाद आपको ये मनुष्य जीवन मिला है। और एक धीर व्यक्ति को समझना चाहिए कि ये नित्य नहीं है, अनित्य है। इसलिए चाणक्य कहते क्या सोच याद रखना चाहिए एक शिष्य को, याद रखना चाहिए हमेशा कि ये संसार अनित्य है, ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए। और दूसरी चीज क्या याद रखनी चाहिए, भक्तों का संग नित्य करना है। एक अनित्य चीज को याद रखना है कि संसार अनित्य है, और दूसरा क्या याद रखना है, नित्य भक्तों का एसोसिएशन मुझे करना है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं, प्रभुपाद ने कहा कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, लेकिन आप ट्राई करो कि एक जीवन अब कृष्ण को दे दो। दीक्षा लेना मीन्स फिर वो अधिकार अपने शरीर पर हमारा नहीं रहता। हम क्या करते, दीक्षा लेना मीन्स इस शरीर को दे डालते हैं। किसको दे डालते हैं, गुरु और कृष्ण को। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि आपने इतने सारे जन्म बिता दिए, इतना जुआ खेला इस शरीर के साथ, एक लाइफ टाइम ये जीवन आप कृष्ण को देकर देखो, आप हताश नहीं होगे, निराश नहीं होगे, आपको लाभ ही मिलेगा। तो ये जो शरीर है, शरीर से संबंधित बहुत सारे भौतिक सुख संपदा आदि है, उससे हम आसक्त होते हैं, और उस आसक्ति को काटने के लिए एक व्यक्ति हमारे जीवन में होना चाहिए, और वो कौन है, गुरु है। गुरु मीन्स जो हमारे आसक्तियों को काट देता है उसको क्या कहते हैं, गुरु। इसलिए जो सन्यासी होते हैं उनके हाथ में दंडा होता है, दंडा वो बांस तीन तीन लकड़ के दंडे होते हैं, और आप ठीक से देखेंगे तो यहां एक अर्ध चंद्र जैसा एक छोटा सा होता है, कई बार आपने देखा होगा सन्यासी का, तो उसको ये कहा जाता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने वर्णन किया है, वो कहते हैं कि वो क्या है, कुल्हाड़ होती है ना काटने के लिए, वो उसका काम करता है। उसका मतलब है ये व्यक्ति पावरफुल है हमारी भौतिक आसक्तियों को काटने के लिए। किसी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को पूछा कि साधु का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा साधु मीन्स कसाई। क्या, कसाई। गुरु मीन्स कसाई, ऐसे बोला उन्होंने। तो उनका शिष्य सोचने लगा क्या हो गया गुरु महाराज को आज। उन्होंने कसाई मतलब जो काटने में एक्सपर्ट है। तो जो गुरु शिष्य की आसक्तियों को काटने में एक्सपर्ट है वो वास्तव में गुरु है। इस प्रकार से हमारे जीवन में भी एक व्यक्ति चाहिए हमारे इल्यूजन मोह आदि को जो काटने का सामर्थ्य रखता है। जैसे बिल्व मंगल ठाकुर थे, उनका आसक्ति किसने काटा, चिंतामणि वेश्या ने। इतने आसक्त थे उससे, वो चिंतामणि वेश्या के पास जब गए उन्होंने कहा अरे तुम इतना प्रयास मुझे प्राप्त करने के लिए कर रहे हो, इससे थोड़ा सा प्रयास कृष्ण प्राप्ति के लिए करते तो आप किसको प्राप्त करते अभी तक, कृष्ण को। वैसे हम देखते हैं रामानुजाचार्य के जीवन में, हाँ जो एक रिसेंटली मैंने लेक्चर में वो स्टोरी बताई थी। रामानुजाचार्य जब जा रहे थे, एक पालकी जा रही थी भगवान रंगनाथ की, तो उसमें एक व्यक्ति एक सुंदर स्त्री के सर के ऊपर छाता लेके उसकी आंखों में देख रहा है। तो रामानुजाचार्य ने कहा क्या देख रहे हो, उन्होंने कहा सुंदर नयनों को देख रहा हूं, इससे सुंदर आंखें इस संसार में किसी की भी नहीं है। रामानुजाचार्य को दया आई, उन्होंने कहा इससे सुंदर आंखें दिखाओ तो देखने के लिए तैयार हो, उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा आ जाओ कल आश्रम में। तो सुबह गए, सीधा उनको भगवान रंगनाथ के सामने ले गए और देखा नयन अभी रामा, भगवान की आंखें कमलों कमल नयन के समान इतनी लंबी और सुंदर है। जब उस डिवोटी जिनका नाम था धनुर्दास, उसने जब देखी तो रोने लगे। उन्होंने कहा कि मैं कितना मूर्ख हूं, इस संसारिक आसक्ति जो वास्तव में निकृष्ट है उससे इतना आसक्त था और आपने मेरे आंखों को खोल दिया है। तो उनकी वो भौतिक आसक्ति क्या कि रामानुजाचार्य ने काट दी। भागवतम में आपने सुना है चित्रकेतु और अंगिरा मुनि का स्टोरी, जो अंगिरा मुनि आते हैं चित्रकेतु की, वो वास्तव में उनकी 1 करोड़ पत्नियां थी। कितनी, तो मैं कभी कभी जब उनके बारे में सोचता हूं तो हमेशा सोचता हूं कि 1 करोड़पति है कि नहीं, उनकी कितनी पत्नियां हैं, 1 करोड़। ये वाला धन हो सकता है, लेकिन पत्नियां जिनकी 1 करोड़ है उसे आप करोड़पति कह सकते हो। तो वहां लेकिन किसी से संतान नहीं हो रहे थे, लेकिन अंगिरा मुनि से कहते आप करो मुझे संतान चाहिए। लाइफ पुत्र ही नाम ग्रहम ही शून्यम, गृहस्थ जीवन पुत्र नहीं है तो घर कैसे है, शून्य के समान है भागवत कहता है। तो उन्होंने कहा पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा अरे समय कम है, भक्ति करो, क्यों इस सब चक्कर में पड़े हो। उन्होंने कहा नहीं, अब ही सुख है। उन्होंने कहा दे दूंगा, लेकिन जो पुत्र है वो दोनों चीजों का कारण बनेगा, सुख का भी और दुख का भी। तो उन्होंने कहा बच्चा हो जाएगा तो उसका नाम हर्ष शोक रखो। क्या? हर्ष शोक। तो देखते हैं हर्ष शोक ने जन्म लिया और फिर दूसरे रानियों की ईर्ष्या थी, उन्होंने विष देकर मार दिया और इतना दुख। मतलब भागवतम में आप पढ़ोगे तो आपको रोना आएगा, क्या क्या बोलते हैं वो राजा। तो उनका दुख को काटने के लिए फिर आते हैं अंगिरा मुनि और उनको क्या करते हैं, उनके आसक्तियों को काट देते हैं। मतलब ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिनमें हम देख सकते हैं कि हमारी भौतिक आसक्तियों से इतने हम मग्न है कि जिनको काटने के लिए हमारे जीवन में एक भक्त चाहिए। जब ये आसक्तियां नहीं कटेगी, हमारा समस्या क्या है, हम भक्ति भी करना चाहते हैं, दीक्षा भी लेना चाहते हैं, लेकिन जो भौतिक आसक्तियां है ना हमारे जीवन में उसको वैसे ही रखना चाहते, उसको कोई छेड़े ना, कोई डिवोटी उसके बारे में पूछे नहीं वो शंक क्यों किया आपने मेरे उन अटैचमेंट के बारे में। यदि हम ऐसा करेंगे तो दीक्षा का लाभ हमारा होना हमें असंभव है। वो वैसे ही है जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती मैरिज पार्टी का उदाहरण देते हैं। रात को वो मैरिज पार्टी निकली जहाज में, बोट में, और वो जा रही थी। जब सुबह हो गई तो पूछा बारात पहुंच गई उस तरफ, तो देखते हैं तो उसी के गांव में है। तो एक ने देखा अरे क्या है, वो लंगर वहां लगा के रखा था। हाँ, तो उसकी तुलना आसक्ति से की गई है। तो हमारी स्थिति भी वैसी होगी यदि हम भक्तिमय जीवन में या दीक्षा की तैयारी में भी हैं, लेकिन इन आसक्तियों को छोड़ना नहीं चाहेंगे तो हम उस मैरिज पार्टी के समान एक ही जगह में हम बने रहेंगे। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि कई बार हम सोचते हैं कि गुरु तो उन व्यक्तियों के लिए चाहिए जिनके जीवन में प्रॉब्लम है। किसको चाहिए? जिनके जीवन में समस्या है। हम भक्ति में आने के बाद सोचते हैं हमारे जीवन में तो समस्या नहीं है। लोग सोचते हैं कि मेरे पास तो इतना धन है, संपदा है, ऐश्वर्य है। अल्टो खड़ी है 1086। किसकी है तो आप उसको हटा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जनरली लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन में आध्यात्मिक गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा जन्म बहुत अच्छे कुल में हुआ है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास भौतिक ज्ञान बहुत है, मैं सुंदर हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से व्यक्ति सोचता है और सोचता है कि उन व्यक्तियों को आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करना चाहिए जिन लोगों का जीवन कष्ट से भरा पड़ा है ना। इसलिए जो बड़े बड़े धनवान लोग हैं वो कभी विचार भी नहीं करते कि जीवन में आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होनी चाहिए। लेकिन वैदिक सभ्यता में यह था कि जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो सारे समाज को शिक्षा प्रदान करते थे और सारे समाज के वो स्वाभाविक रूप में गुरु थे। जो ब्राह्मण है उनके पास अलग अलग एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद और धनुर्वेद आदि का ज्ञान था, वो जाते थे इस प्रकार का ज्ञान देते थे, लेकिन साथ ही साथ आध्यात्मिक ज्ञान उनको प्रदान करते थे। सीधा लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान दो तो कोई व्यक्ति सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनको बाकी नॉलेज बता दो तो फिर वो सुनते आध्यात्मिक ज्ञान। जैसे इस्कॉन में भी सीधा उनको नहीं बताते कि आपको माला करना है, जप करना है, गीता पढ़नी है, कहते आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, कोर्स हम करने जा रहे हैं आपके लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट 6 सेशन कोर्स, कैसे सुखी होना है, तो ये धोखा ही दे रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं। लेकिन आने के बाद उसको हम ये सारे कोर्स रियलाइज करवाते हैं कि आप सुखी नहीं हो, और जो ये अनुभव कर चुका है कि मैं सुखी नहीं हूं, वो हमेशा इस मन में बना रहता है। आगे क्या करने के लिए, भक्ति को कंटिन्यू करने के लिए, सुख की खोज में है। तो उसी प्रकार से जो ब्राह्मण थे वैदिक कल्चर में, वो लोगों के पास जाते थे, उनको न्याय, आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी, भविष्य आदि की शिक्षा देते थे, और उसमें लोग इंटरेस्टेड थे, और फिर धीरे धीरे उनको भगवद गीता भागवत का ज्ञान देते थे, और फिर वो लोग ये जान पाते थे कि मेरा जीवन सुखमय नहीं है, कष्टों से भरा हुआ है। तो इसलिए फिर व्यक्ति सोचने लगता है आध्यात्मिक गुरु के शेल्टर के बारे में। तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत क्वालिफाइड व्यक्ति हूं, मुझे नीड नहीं है। बल्कि अर्जुन के जीवन में हम देखते हैं कि अर्जुन के समान क्वालिफाइड व्यक्ति कोई नहीं था, इतना शक्तिशाली, इतना सामर्थ्यवान। जहां अर्जुन क्या करते थे, अर्जुन भी द्रोणाचार्य से शिक्षा लेकर अभी फाइनली उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा के लिए भगवान कृष्ण को उन्होंने स्वीकारा था। इतने असाधारण थे अर्जुन। अर्जुन की योग्यताओं को आप गिने, कौन बता सकता है अर्जुन की योग्यताएं, एक एक योग्यता। हाँ, सबसे बड़े धनुर्धर थे, और शिवजी को परास्त करके उन्होंने पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था, द्रौपदी को जीता था, इतने परफेक्ट धनुर्धर थे, गुड़ाकेश थे, नींद को भी उन्होंने क्या किया था। हाँ, हम स्ट्रगल करते हैं, प्रवचन जब शुरू होता है तो जगह रहने के लिए हम फाइट करते रहते हैं, और क्या हो सकते है अर्जुन की योग्यता। बेस्ट डिवोटी कृष्णा के थे, लेकिन फिर भी ऐसे अर्जुन कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं। लेकिन ऐसा जो डिवोटी है, इतना बड़ा महान योद्धा था, लेकिन फिर भी महाभारत के युद्ध के पहले रोने लगता है, क्या करने लगता है, रोने लगता है। पहला अध्याय गीता का आप पढ़ते हैं तो कहता है कि मेरा मुख सूखे सूख रहा है, शरीर में रोमांच हो रहे हैं, गदगद हो रहा है, गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है, मुझे खड़ा नहीं रहा जा रहा है। और तब ये असाधारण योद्धा क्या करता है, कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। तो अर्जुन जैसे योग्य क्वालिफाइड व्यक्ति भी आध्यात्मिक गुरु चाहता है अपने जीवन में, तो हमें निश्चित रूप से आध्यात्मिक गुरु को क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। मॉडर्न वे में अर्जुन जैसे लोग हैं जिनके पास सुंदर घर है, कार है, बिजनेस है, धन है, सब कुछ है, तो वो सोच सकते हैं कि मेरे लिए कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। तो गुरु इसलिए हमें चाहिए है क्योंकि हमारे जीवन में जितने सारे भौतिक कष्ट हैं, उनको गुरु क्या करते हैं, फुल स्टॉप देते हैं। क्या देते हैं, फुल स्टॉप। स्पिरिचुअल मास्टर मीन्स जो सारे भौतिक कष्टों को फुल स्टॉप दे, उसे वास्तव में गुरु कहते हैं। कोई कह सकता है कि मुझे गुरु धारण करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने कई सारे डिवोटीज देखे हैं इस्कॉन में 20-20 साल से हैं, लेकिन दीक्षा नहीं लेंगे, हम माला सोला करेंगे, चार नियम का पालन करेंगे, लेकिन किसी के बंधन में नहीं रहना चाहेंगे हम। ऐसे कई सारे भक्त हैं। कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं तो जान गया कृष्ण परम भगवान है, और मैं शास्त्रों का भी अध्ययन कर रहा हूं, लेकिन मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है। जैसे प्रभुपाद जब शुरुआत के दिनों में उनके एक बाल में शिष्य बने, तो वो प्रभुपाद के पास रोते हुए गए, ऐसे घुटनों में प्रभुपाद ऊंचे जगह बैठे थे, और वो गए और रोते हुए उन्होंने कहा कि मेरे और कृष्ण के बीच में आप नहीं चाहिए। क्या कहा प्रभुपाद को, मेरे और कृष्ण के बीच में आप नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा कृष्ण को समझना फिर असंभव है। यश प्रसादात भगवत प्रसादो, यश अप्रसादात न गति कृतोपि। तो फिर ये सुनकर वो जो यंग डिवोटी था वो जोर जोर से रोने लगा। तो हम चाहे जितने भी महान क्यों ना हो, हमें ये ज्ञान क्यों ना हो कि कृष्ण परम भगवान है, देवताओं की ये सिचुएशन है इस्कॉन के आने के बाद, और कई लोग डिले करवाते हैं, दीक्षा नहीं लेनी है, तो उचित नहीं है। तो इसलिए कोई व्यक्ति कहे कि मुझे भगवान के बारे में पता है, शास्त्रों का मैं अध्ययन कर रहा हूं, हरे नाम का जप कर रहा हूं, चार नियमों का पालन कर रहा हूं, ये इतना इनफ है, इतना इनफ नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त का आश्रय ग्रहण नहीं करता, तब तक कृष्ण उसकी सेवाओं को स्वीकार नहीं करते हैं। कृष्ण अटेंटिव हो जाते हैं उस व्यक्ति की ओर, और क्यों? क्योंकि भगवान देखते कि मेरे शुद्ध भक्त के आश्रय में रहकर वो मुझे सर्व कर रहा है। जैसे ब्रह्मा आदि थे, इंद्र आदि थे, उनको भी ये ज्ञान है कि कृष्ण भगवान है, शास्त्रों को पढ़ा है, लेकिन फिर भी वो लोग मोहित हो जाते हैं। इस कारण से जब आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना परम आवश्यक है, केवल शास्त्रों को पढ़ना ही काफी नहीं है, क्योंकि शास्त्रों की तुलना की गई है सागर से, तो सागर में आप क्या ढूंढोगे? तो आध्यात्मिक गुरु शास्त्र रूपी सागर से जो महत्वपूर्ण उपदेश है वो निकालकर हमें प्रदान करते हैं, और वो शिक्षा जो हम स्वीकार करते हैं तो कृष्ण को समझना हमारे लिए सरल हो जाता है। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं, ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो। वेदों के लिए भी भगवान दुर्लभ है, लेकिन भक्तों के लिए दुर्लभ नहीं है। इस कारण से कृष्ण हमेशा चाहते हैं कि एक जीव को मेरे शुद्ध भक्त का पहले शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो मेरा भक्त बन सकता है। इसलिए हम बारंबार सुनते हैं आदि पुराण का उदाहरण, भगवान अर्जुन को कहते कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा क्या है? भक्त है। जो मेरा कहता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूं वो मेरा भक्त नहीं है। तो शिष्य के लिए सबसे पहले डिवोटी या वैष्णव कोई है तो वो आध्यात्मिक गुरु है। कौन? आध्यात्मिक गुरु। उसके लिए सबसे पहला डिवोटी, सबसे पहला वैष्णव कोई है तो स्पिरिचुअल मास्टर है, और उनकी शरण ग्रहण करना उसके लिए प्रमुख है। इसलिए कृष्ण जब ये जगत में अवतरित होते हैं तो उनको आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो सांदीपनि मुनि को स्वीकार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु आते हैं, उनको कोई नीड नहीं है, लेकिन किसको गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं? ईश्वरपुरी को। इवन एक महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर, वो आए, उनको तो सब कुछ चैतन्य, पहले ही महाप्रभु चैतन्य ने उनको प्रेम प्रदान किया था, उनको भी कोई गुरु की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने गुरु को स्वीकार किया। कौन थे उनके गुरु? लोकनाथ गोस्वामी। तो इस प्रकार से हर आचार्य या स्वयं भगवान आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करते हैं। इसलिए भागवतम में 11वें स्कंद में वर्णन आता है, नर देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूलेन नवस्व तेरितम पुमान भवाब्दिन तरे स आत्मा। उस व्यक्ति को आत्महत्या करने वाला कहा गया है जो व्यक्ति ये मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी जो इस मनुष्य देह की तुलना एक नाव से की गई है, और इस नाव का कैप्टन कौन है? गुरु है। कौन है? गुरु है। तो मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी गुरु रूपी कैप्टन उसके पास है, और भगवान कहते जो फेवरेबल हवा है वो मेरे उपदेश है। इतना सब कुछ होकर भी जो व्यक्ति भव सागर को पार करना नहीं चाहता वो व्यक्ति क्या है? आत्महत्यारा है। मतलब ये दो चीजें हमारे पास है, बॉडी है, कृष्ण के उपदेश है, लेकिन तीसरी चीज हमारे पास नहीं है। क्या है? गुरु, जो कैप्टन है, कैप्टन इस नाव को पार करके ले जा सकता है। और यदि हम इन तीनों का संगम नहीं रखते या स्वीकार नहीं करते तो भागवतम कहता है वो व्यक्ति अपनी स्वयं की आत्महत्या कर रहा है। इसलिए भागवतम में गुरु का वर्णन 11वें स्कंद में बहुत विस्तार से आया है। तो वहां ये कहा गया है कि कौन व्यक्ति क्वालिफाइड है गुरु के पास जाने के लिए, मतलब जिसके पास ये मनुष्य जीवन है और जिस व्यक्ति ने ये अनुभव किया है कि वास्तव में मैं इस भौतिक संसार में तप रहा हूं, इस भौतिक संसार में अनित्य सुख प्राप्त करने के लिए कष्ट कर रहा हूं, संघर्ष में हूं, ये जिसके हृदय में ये भावना है वही व्यक्ति गुरु के पास जाने के लिए क्वालिफाइड है, अन्यथा नहीं। जो व्यक्ति ये सोचता है कि इस संसार में रहकर मैं सुखी रहूंगा या सुखी बनना चाहता हूं, उस व्यक्ति को गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्रभुपाद हमेशा श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक कोट किया करते थे। प्रभुपाद ने कहा तस्मात् गुरु प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तमः। तो यहां श्रीमद् भागवतम में गुरु के पास जाने के लिए हमें प्रोत्साहित किया जाता है। क्यों प्रोत्साहित करते हैं? इसलिए है क्योंकि हम इस संसार में शाश्वत सुख चाहते हैं। तो यदि किसी को शाश्वत सुख चाहिए तो भागवतम कहता है उसको गुरु के पास जाना चाहिए। तस्मात् गुरु प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तम शाब्द परे च निष्णातम ब्रह्मान्यो उपशमाश्रयम्। अतएव जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक असली सुख की इच्छा रखता हो उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए। क्या कहा इसमें? जो व्यक्ति वास्तव में असली सुख चाहता है उसको किसके पास जाना चाहिए? गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के पास जाना काफी नहीं है, फिर उसके आगे क्या करना चाहिए? और दीक्षा द्वारा उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। किसके द्वारा? दीक्षा मीन्स गुरु की शरण ग्रहण करना। फिर वो कहते हैं प्रामाणिक गुरु की योग्यता ये होती है कि वो विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्ष से अवगत हो चुका है और इन निष्कर्षों के विषय में अन्यों को आश्वस्त करने में सक्षम है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त भौतिक धारणाओं को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर ली है उन्हें प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए। तो मतलब श्रीमद् भागवतम कहता है कि व्यक्ति को दिव्य विज्ञान को सीखने के लिए आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करना चाहिए। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत। अभिगच्छेत का मतलब है चलो जाओ अपना घर छोड़कर गुरु के पास दिव्य विज्ञान को सीखने के लिए। हाँ, तो क्यों दीक्षा इतनी महत्वपूर्ण है? शास्त्र कहते हैं अदीक्षितस्य वामोरु कृतं सर्व निरर्थकम्। जिस व्यक्ति के पास मनुष्य जीवन है लेकिन मनुष्य जीवन होने के बावजूद जिसने दीक्षा ग्रहण नहीं की उसका जीवन क्या है? निरर्थक है। क्यों? क्यों निरर्थक है? पशु योनिम अवाप्नोति दीक्षा विरहितो जना। उस व्यक्ति को निश्चित रूप से पशु के शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा जिसने गुरु से दीक्षा ग्रहण नहीं की। हाँ, शास्त्र कहता है। इसलिए वो कहते हैं सनातन गोस्वामी कहते हैं अतो गुरु प्रणमैवम सर्वस्व विनिधेच ग्रहणीयाद वैष्णव मंत्र दीक्षा पूर्व विधानतः। तो एक व्यक्ति को इसी कारण से जल्दी करना चाहिए। जब रामानुजाचार्य का नाम सुना है आप सबने? कौन से संप्रदाय के आचार्य हैं? दीक्षा के लिए हमें चारों संप्रदायों के बारे में जानना चाहिए। हाँ, इन परंपराओं के बारे में जानना चाहिए। तो रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के आचार्य हैं और हमारे संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन है? मध्वाचार्य हैं। तो ये रामानुजाचार्य का दीक्षा नहीं हुआ था। जब रामानुजाचार्य को कहा कि आपको एक डिवोटी से दीक्षा ग्रहण करनी है जिनका नाम महापूर्ण है, तो वो चलने लगे अपने टाउन से उस दूसरे शहर जाने के लिए। 4 दिन लगते चल चल कर, और उस दूसरे स्थान से भी वो महान भक्त चल के आ रहे थे इनको दीक्षा देने के लिए। इन दोनों का मुलाकात होती है एक स्थान में सरोवर के किनारे एक वृक्ष के नीचे। तो उनके वो गुरु कहते चलो अभी यहां नहीं दीक्षा देता हूं, आपके गांव में चल के दीक्षा दे देता हूं। रामानुजाचार्य कहते नहीं, मुझे दीक्षा कब चाहिए? अभी, क्योंकि ये शरीर कभी भी मर सकता है, मेरी चलते चलते मृत्यु हो सकती है। मैं नहीं इतना विलंब चाहता, मैं चाहता हूं कि आप मुझे दीक्षा देकर अपना अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। तो वहां ही उस सरोवर के किनारे वृक्ष के नीचे रामानुजाचार्य को दीक्षा दी जाती है। इसलिए सनातन गोस्वामी ने कहा अतो गुरु प्रणमयम सर्वस्व विनिवेद्यच, कि एक व्यक्ति को गुरु को प्रणाम करके अपना सर्वस्व उनको अर्पित करना चाहिए। और ग्रहणीयाद वैष्णवम मंत्र, वैष्णव मंत्र को स्वीकार करना चाहिए, बाकी किसी देवी देवताओं के मंत्रों को नहीं। इसलिए कई लोग होते हैं ना जो बहुत सारे गुरुओं को स्वीकार करके इस देवता का उस देवताओं का मंत्रों को स्वीकार करते हैं, लेकिन शास्त्र कहते केवल हमें वैष्णव मंत्र स्वीकार करना चाहिए। तो फिर रूप गोस्वामी कहते हैं कि दीक्षा का मतलब क्या है, तो वो लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि एक शिष्य को अपनी प्रगति करने के लिए, भक्तिमय जीवन में उन्नति करने के लिए चार चीजें बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले वो कहते हैं गुरु पादाश्रय तस्मा कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। तो रूप गोस्वामी भक्ति में उन्नति की जब बात करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि एक शिष्य को, एक व्यक्ति को या एक भक्त को चार चीजें आवश्यक है। सबसे पहली वस्तु भक्तिमय जीवन है गुरु पादाश्रय, क्या है, गुरु के शरण ग्रहण करना। क्योंकि आध्यात्मिक गुरु की शरण जब तक हम ग्रहण नहीं करते तब तक आध्यात्मिक जीवन शुरू नहीं होता। इसलिए दीक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनिशिएशन, कुछ कार्य इनिशिएट कहते ना, इनिशिएट कर रहा हूं कार्य में, तो उसका मतलब ये शुरुआत है। दीक्षा कोई एंड नहीं है, और केवल दीक्षा ही काफी नहीं है भगवत धाम जाने के लिए। दीक्षा मतलब आपने उस संप्रदाय में प्रवेश कर लिया है, क्या कर लिया है, संप्रदाय में एडमिशन हो गया है आपका। बस जैसे स्कूल में एडमिशन होता है, अधिकृत स्कूल में बच्चे एडमिशन ले ले और कुछ करे नहीं तो उसके लिए टीचर जिम्मेदार नहीं है। उसी प्रकार से दीक्षा का मतलब है कि केवल इस संप्रदाय में एक शुद्ध भक्त का आश्रय लेकर आपने एडमिशन ले लिया है। इसलिए भक्तों को जितना जल्दी हो सके गुरु पादाश्रय, गुरु के चरणों का आश्रय पहली चीज। उतना ही नहीं, कुछ लोग होते हैं गुरु से दीक्षा ले लेते हैं और फिर बस फिर से सब कुछ बंद हो जाता है, मंदिर आना बंद हो जाता है, सेवा करना बंद हो जाता है, गायब हो जाते हैं। कितने भक्तों को देखा है मैंने दिल्ली में भी, दीक्षा के बाद मैंने आज तक उनको नहीं देखा। जिनकी दीक्षा मेरे साथ हुए थे उनमें से मुझे चार पांच लोग ही दिखाई देते हैं, उनमें से कोई नजर नहीं आता। क्यों, केवल इतना काफी नहीं है गुरु पादाश्रय। उसके बाद रूप गोस्वामी कहते हैं दूसरी चीज भी आवश्यक है, वो है कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। गुरु का शरण ग्रहण करके गुरु से शिक्षा लेनी चाहिए। हाँ, क्या लेनी चाहिए, शिक्षा, हमेशा सीखना चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी बहुत उन्नति करना चाहता है, विद्या अर्जन करना चाहता है, उसी प्रकार से एक शिष्य को भी सदैव गुरु के द्वारा हमेशा सीखना चाहिए। शिष्य का मतलब यह है जो सीखना चाहता है, और मृत्यु तक हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। भक्ति में ऐसा एक भी ऐसा लेवल नहीं है कि आपके पास अभी आगे सीखने के लिए कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। मृत्यु के अंतिम श्वास तक आप सीखते रह सकते हो। इसलिए दीक्षा के बाद क्या आवश्यक है, शिक्षा, यह आवश्यक है। इसलिए कई प्रकार के गुरुज हैं, कुछ गुरु होते हैं जिनको कहा जाता है मंत्र दत्त गुरु। कौन से गुरु, वो आपको मंत्र देंगे और उसके बाद आपको भूल जाएंगे, बस साल में एक बार आपको कहेंगे डोनेशन भेजते रहो ऑनलाइन, वो नहीं। उसके बाद आवश्यक है मंत्र दत्त गुरु नहीं है, बल्कि वो क्या करे, शिक्षा भी दे रेगुलर। इसलिए प्रभुपाद ने केवल मंत्र देकर डिसाइपल को नहीं छोड़ा, क्या किया उन्होंने, मंदिर दे दिए और मंदिर में श्रवणा कीर्तना और कृष्ण की सेवा दी। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। और तीसरी चीज क्या है, विश्रम्बेन गुरुर सेवा। विश्रम्बेन मीन्स आदर और सम्मान के साथ अपना जीवन लगाकर गुरु की सेवा करना। और चौथी चीज है साधु वर्तमान वर्तनम। चौथी चीज क्या है कि गुरु से शिक्षा, उनकी सेवा करके जो साधुगण है जो महान पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उनकी सेवा करने का प्रयास करना। इसलिए जो रूप गोस्वामी हैं, इन चार चीजों को प्रदान करते हैं। सबसे शुरुआत में भक्ति के अंग, और जब हम इनको स्वीकार करते हैं तब हमारा वास्तव में भक्तिमय जीवन शुरू होता है। तब भक्तिमय जीवन शुरू होता है। जैसे बच्चे पहले केजी में, और अभी तो मुझे पता नहीं वो सारे सीक्वेंस, तो वैसे अभी इससे पहले हमारा लाइफ कैसे उसी में ही था, लेकिन अभी हम क्या है, पहली क्लास में एंट्री कर रहे हैं। दीक्षा का मतलब है तब हम वास्तव में फिर भगवत भक्ति का जो महल है उसमें प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं दीक्षा शब्द का अर्थ, वो कहते हैं दीक्षा का मतलब है दिव्य ज्ञानम यथोदद्यात् कुर्यात् पापस्य संशयम् तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकैस्तत्त्व कोविदा। जो बुद्धिमान लोग कहते हैं दीक्षा का मतलब है दिव्य ज्ञानम यथोदद्यात्, दी का मतलब है दिव्य ज्ञान, और क्षा का मतलब है अज्ञान की क्षति। इसको क्या कहते हैं, दीक्षा कहा जाता है कि जिस प्रोसेस से हमारे पास दिव्य ज्ञान की वृद्धि हो और अज्ञान हमारे जीवन से खत्म हो जाए, चला जाए, नष्ट हो जाए, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दीक्षा कहा जाता है। तो अज्ञान क्या है, कोई कह सकता है कि अज्ञान क्या है? अज्ञान है देहात्म बुद्धि। कौन सी बुद्धि? तो सबसे बड़ा अज्ञान। इस अज्ञान से हम बाहर आ गए तो हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन सबसे आनंददायी होगा। इसलिए भक्ति में आने के बाद भी हम आनंदित अनुभव नहीं करते, क्यों? क्योंकि हम देहात्म बुद्धि से बहुत पकड़े हुए हैं। इस कारण से जीव गोस्वामी कहते हैं दी का मतलब है दिव्य ज्ञान, और क्षा का मतलब है क्षति, अज्ञान की क्षति। तो दीक्षा का मतलब है कि व्यक्ति दिव्य ज्ञान को स्वीकार करता है और उस दिव्य ज्ञान के आधार पर अपना जीवन यापन करता है, उसी को क्या कहते हैं, दीक्षा कहते हैं। तो उस दिव्य ज्ञान के आधार पर उसका थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, अनुभव करना, इच्छा करना, सोचना, ये सब किन चीजों के आधार पर बन जाता है, फिर दिव्य ज्ञान के आधार पर। अभी भी आप वो कार्य कर रहे हैं थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, लेकिन कौन से आधार पर, अज्ञान के कारण या देहात्म बुद्धि के आधार पर। इसलिए दीक्षा को आचार्यगण कहते हैं कि ये वैसे ही है, क्योंकि देहात्म बुद्धि हटेगी तो दीक्षा का फ्रूट हमें मिलेगा। तो इसलिए गुरु का काम क्या है कि गुरु इस देहात्म बुद्धि रूपी अज्ञान को काटता है, डॉक्टर का काम करता है। जैसे कोई गर्भवती स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ के साथ जुड़ा रहता है, किस चीज से जुड़ा रहता है, नाल के साथ। तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले कट कट करो, तभी वो आगे ठीक हो सकता है। ऐसे नहीं किसी को देखा है वो नाल के साथ कनेक्टेड है अपने माँ के साथ, नहीं। तो उसी प्रकार से जो गुरु है, दीक्षा का मतलब है कि गुरु क्या करते हैं, जो हमारा जो मिथ्या अहंकार है शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, गुरु उसको क्या करते हैं, काट देते हैं। क्योंकि जो आत्मा है ये मिथ्या अहंकार रूपी रस्सी से बंधा हुआ है शरीर से, तो गुरु क्या करते हैं, इस मिथ्या अहंकार को काटते हैं, और मिथ्या अहंकार की तुलना नाल से की गई है। इसलिए गुरु को साधु वैद्य कहा गया है। साधु मीन्स जो अनटाई करता है, छोड़ता है आपको, रिलीज करता है, मुक्त करता है, अज्ञान को काटता है। तो इसलिए दीक्षा का अर्थ है दिव्य ज्ञान को स्वीकार करना और शरीर के साथ जो हमारा देहात्म बुद्धि का भाव है उसको काटना, इसको दीक्षा कहते हैं। तो दीक्षा लेने के बाद ये नहीं हुआ तो फिर हमारी दीक्षा नहीं हुई। क्या कहा मैंने, दीक्षा लेने के बाद ये दो चीजें नहीं हुई हमारे साथ। कौन सी दो चीजें? और देहात्म बुद्धि का जो भाव है वो यदि कट नहीं हुआ तो उचित रूप से हमारी दीक्षा नहीं हुई है। तो दोष किसका है इसमें? किसका? हमारा है। तो दोष क्या है, उसके कारण क्या है, यदि ये नहीं हुआ तो उसके दो कारण है। उसका कारण क्या है? इनसफिशियंट नॉलेज। सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से भगवत भक्ति आदि का ज्ञान नहीं होना। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे, मेरे मुझे बहुत दुख होता है। किसी ने पूछा, प्रभुपाद क्यों आपको दुख होता है इतना? प्रभुपाद ने कहा, मुझे इसलिए दुख होता है कि मैंने रात रात जग जग के ग्रंथों को लिखा है और ये बेचने के लिए, पैसे कमाने के लिए नहीं लिखा, ये मेरे भक्तों को पढ़ने के लिए लिखा है। लेकिन मैं सबसे अधिक दुखी महसूस होता हूं जब मेरे भक्त मेरे आंदोलन में मेरे ग्रंथों को नहीं पढ़ रहे हैं। एक माता जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी रेड लाइट में, तो उसने कार जा रही थी, उसको नॉक किया और जो वो विंडो खोला तो उसने ड्राइवर को बुक पकड़ा दी। ड्राइवर ने वो बुक पीछे ले ली जो बैठा हुआ था, तो पीछे जो व्यक्ति बैठा था उसने बुक ले ली, पेन निकाला, लंबी साइन अपना सिग्नेचर मारा, ड्राइवर को दी और ड्राइवर ने किसको दी? माता जी को दी। तो और लिखा भी लाइन तो उसमें था। तो उस माता जी ने जब देखा तो उसके आंखों से आंसू आ गए। उस कार में कौन बैठे थे? प्रभुपाद। कौन? और प्रभुपाद ने अपना साइन किया, लिखा था कि तुम ये बुक बांट रहे हो, उपदेशामृत बुक था, क्या तुमने इसे पढ़ा भी है कभी? ये देख, ये जब पढ़ा ये लाइन तो वो रोने लगी, रेड लाइट पर ही रोने लगी। तो प्रभुपाद दुखी होते हैं जब हम उनके ग्रंथों को नहीं पढ़ते और नहीं समझते। इसलिए पहला कारण है प्रॉब्लम इनसफिशिएंट नॉलेज, और दूसरा है कि वो ज्ञान हमें मिल भी जाए लेकिन हम उसकी अनुभूति नहीं करते और शरणागत नहीं होते गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए। तो जितना अधिक गुरु के आदेशों का पालन हम करते दृढ़ता से, उतना ही अधिक हमारा ये जो देहात्म बुद्धि है वो खत्म होने लगता है। तो इसलिए दीक्षा का दूसरा एक अर्थ भी है शरणागति। क्या है? हाँ, दीक्षा का मतलब है कि शरण ग्रहण करना, सरेंडर होना, और ये अनुभव करना कि मेरे पास स्वतंत्रता नहीं है, मैं स्वतंत्र नहीं हूं इस संसार में। मैं सोच रहा था त्यागी बनना बहुत सरल है, हम सब कुछ त्याग सकते हैं, हम अपने माता पिता त्याग सकते हैं, भोजन त्याग सकते हैं, पैसा त्याग सकते हैं, पत्नी त्याग सकते हैं, बच्चों को त्याग सकते हैं, इंद्रिय तृप्ति को भी त्याग सकते हैं, लेकिन एक चीज को त्यागना बहुत बहुत कठिन है और वो है स्वतंत्रता का भाव। कौन सा भाव? हाँ, इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि इस्कॉन में रहना बहुत कठिन है, बल्कि इस हिमालय में जाकर रोज एक गाजर खा के रहना बहुत सरल है, उसमें केवल आपका अहंकार ही बढ़ता है क्योंकि वह आप स्वतंत्र हो, वहां पे ढोकने टोकने वाला नहीं है, प्रभु जी माला की कि नहीं की, समय में मंगल आरती आए कि नहीं आए, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सेवा की कि नहीं, मतलब यहाँ हमारा स्वतंत्रता का कुछ यही नहीं, स्थान ही नहीं है। तो गुरु दीक्षा का मतलब है अपने जो, इसलिए तो कृष्ण से हम अलग क्यों है, वो कहते हैं माइनूट इंडिपेंडेंस, जो थोड़ी सी स्वतंत्रता है उसका दुरुपयोग किया इसलिए हम कृष्ण से अलग है। इसलिए उस स्वतंत्रता को किसके चरणों में अर्पित करना? गुरु के चरणों में, इसलिए उसको दीक्षा कहते हैं। और वो स्वतंत्र भाव हम अर्पित करते हैं तब हम वास्तव में डिसाइपल कहते हैं, अन्यथा हम शिष्य नहीं है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को पूछा, आपके कितने शिष्य है? उन्होंने कहा, मेरे बस दो या तीन ही शिष्य है। हजारों लोगों को दीक्षा दी थी उन्होंने, उन्होंने कहा दो या तीन ही शिष्य है, बाकी सारे फॉलोअर्स है, अनुयायी है। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपना स्वतंत्र भाव मुझे अर्पित नहीं किया है। इसलिए कृष्ण भी हमसे वैसा ही व्यवहार रखते हैं जैसा हम कृष्ण के साथ व्यवहार करते हैं। तो इसलिए शिष्य का मतलब भी है कि जो अपने स्वतंत्रता का जो भाव है उसको आध्यात्मिक गुरु के चरणों में समर्पित करता है और उसी को ही दीक्षा कहा जाता है। और यदि स्वतंत्रता का भाव हम त्यागते नहीं है तो वास्तव में हम आध्यात्मिक गुरु की जो शरण है ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि दीक्षा का मतलब, कई बार ये भी हो सकता है कि कोई सोच सकता है कि क्या दीक्षा के दिन ही 100% शरणागति आवश्यक है, फुल्ली सरेंडर? नहीं, वो तो एक शुरुआत है। शरणागति की क्या है? शुरुआत है। तो अर्जुन के जीवन में भी हम देखते हैं शरणागति का लक्षण क्या है। अर्जुन को सब उपदेश दे दिया भगवान ने, भगवान ने फोर्स नहीं किया। उसी प्रकार से गुरु भी फोर्स नहीं करते हैं, उपदेश दे देते हैं। अर्जुन को इतना सारा उपदेश दिया और भगवान ने कहा यथे चेसी तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा है ना अर्जुन वैसे करो। तो अर्जुन ने फिर एक श्लोक बोला, नष्ट मोह स्मृतिर लब्ध्वा तत्परेण। हम कहते कि मेरा जो मोह है वो नष्ट हो गया है। फिर एक लाइन कहते करिष्ये वचनम तव, आपका जो वचन है उसके अनुसार मैं करूंगा। तो हमारे लिए शरणागति क्या है कि जो हमें गुरु के आदेश हैं उनको पालन करना गंभीरता से। दीक्षा के समय जो हमें आदेश मिलते हैं, जो व्यक्ति गंभीरता से उन आदेशों को फॉलो करता है, सबसे पहले उसका फेथ का लेवल बढ़ने लगता है गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति और प्रोसेस के प्रति, और उसकी शरणागति भी बढ़ने लगती है और उसको उसकी जो आध्यात्मिक जीवन की अंडरस्टैंडिंग है वो भी बढ़ने लगती है। इसलिए हमें जानना चाहिए कि हमारे दुखों का कारण स्वतंत्रता है। तो इसी कारण से गुरु के चरणों में ये जो स्वतंत्रता है उसको अर्पित करना। क्योंकि गुरु हमसे कोई और चीज की अपेक्षा नहीं रखते हैं, क्योंकि गुरु आध्यात्मिक गुरु हमारे धन आदि में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। वो तो केवल चाहते हैं कि एक जो शिष्य है अपना शरीर मन और वाणी को क्या करे, समर्पित करे। तो जो दीक्षा है वो प्रोसेस है शरणागति के, और शरणागति कब तक होती रहती है? शरणागति की तुलना की गई है सांस लेने के समान। जब तक हमारे शरीर में सांस है उस हर सांस यन होने तक हमें क्या होना है? शरणागत होना है, और शरणागत और शरणागत और शरणागत। लेकिन साल जैसे बीतते हैं शरणागति नहीं बढ़ती हमारी, हम भागना चाहते हैं, छुप जाते हैं, गुरु की सेवा नहीं करना चाहते। इसी कारण से दीक्षा एक मिनट का टास्क नहीं है। मतलब यह नहीं कि जिस दिन दीक्षा का दिन है बस उस दिन दीक्षा हो गई, नहीं, वो दीक्षा शुरू हो गई है। और ये दीक्षा कब तक चलेगी? आखिरी सांस तक। क्योंकि दीक्षा में क्या होता है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकार करते हैं। तो कब तक ज्ञान स्वीकार करना है हमें? पूरे जीवन भर। और कब तक एक अज्ञान को तोड़ना है? पूरे जीवन भर। तो ये कंटिन्यूस ये जो प्रोसेस है दीक्षा की, इसलिए दीक्षा को मृत्यु भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मृत्यु। जिसने दीक्षा ली वो मतलब वो भौतिक रूप से क्या हो गया? मर गया। इसलिए संन्यास, संन्यास दीक्षा होती है ना, संन्यास जो लेता है उसको क्या घोषित किया जाता है? वो व्यक्ति मर गया है सबके लिए। तो वो दीक्षा भी वैसे ही है। जीव गोस्वामी इसके बारे में कहते हैं, कि दीक्षा हम स्वीकार करते हैं उसका मतलब है कि हमारा भौतिक जीवन मर गया है, फिर हम क्या हो गया, अभी नया जन्म हमने प्राप्त किया है ना, इसलिए नया नाम देते हैं बच्चा। ऐसे कभी हुआ है कि कोई व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति जन्म लेता है उसे हम नया नाम देते हैं, है कि नहीं? तो दीक्षा का मतलब है भौतिक जीवन हमारा खत्म हो गया, भौतिक रूप से हम मर गए और अभी हमने नया जन्म लिया, इसलिए हमें नया नाम मिलता है और फिर हम द्विजत्व प्राप्त करते हैं। इसलिए दीक्षा मीन्स न्यू लाइफ, नया जीवन मतलब नए माता पिता होने चाहिए आपके पास, और क्या होना चाहिए, नए विचार होने चाहिए, नई एंगेजमेंट होनी चाहिए, नए मित्र होने चाहिए, नया नाम होना चाहिए, नई जिम्मेदारी आपके पास होनी चाहिए और नया संसार, नया फैमिली भी आपके पास होना चाहिए। हाँ, तो वास्तव में वो दीक्षा है। तो नए माता पिता मीन्स कौन, दीक्षा का मतलब है माता पिता नए होने चाहिए। तो भागवत में दीक्षा को कहा गया है कि दोबारा हम जन्म लेते हैं, हम पहला जन्म हम लेते हैं माता पिता से, शुक्र या वीर्य के द्वारा हम जन्म लेते हैं और उसको शौक्र जन्म कहा जाता है, और दूसरा जन्म हम लेते हैं गुरु से जब दीक्षा प्राप्त करते हैं उसको सावित्र जन्म कहते हैं, गुरु हमें दीक्षित करते हैं, नया नाम देते हैं, और तीसरा है याज्ञिक जन्म जो हम ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त करते हैं। अभी जो दीक्षा है कौन सी है, हरिनाम दीक्षा, और फिर उसके बाद कौन सी है, ब्राह्मण दीक्षा। इस प्रकार से हमारा नया जन्म हो रहा है, नए माता पिता है, तो पिता कौन है हमारे, गुरु है, कौन, और माता कौन है, शास्त्र है। तो ये नए माता पिता है हमारे, और नए विचार होने चाहिए हमारे पास। नया विचार क्या है, जाने देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको भी आप मिलोगे उसको कृष्ण का उपदेश दो। नए कार्य होना चाहिए आपके पास, नया कार्य क्या है, गुरु और कृष्ण के आदेशों का पालन करना, और डिवोटीज हमारे मित्र होने चाहिए, अधिक से अधिक भक्तों से मित्रता बनाए, और नया अहंकार भी हमारे पास होना चाहिए। कौन सा अहंकार, कि मैं अभी अपने गुरु और कृष्ण का हूं, अभी हम क्या सोच रहे, मैं अभी मेरे पत्नी का हूं, मैं अपने पति का हूं, मैं अपने ऑफिस के बॉस का हूं, नहीं, अभी मैं किसका हूं, गुरु और कृष्ण का हूं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बहुत बड़ी डांट लगाई थी। सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दिया था, एक प्रकार से रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का नामकरण चैतन्य महाप्रभु ने किया था, और जब सनातन गोस्वामी वृंदावन से जगन्नाथपुरी जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने गड्ढे में से पानी वगैरह पिया और उनको बहुत बड़ी बीमारी हुई, सारा शरीर से खून पस निकल रहा था, दुर्गंध आ रही थी। सनातन गोस्वामी ने सोचा जगन्नाथपुरी पहुंचते ही बस एक बार दूर से चैतन्य महाप्रभु को देखूंगा, और दूसरे दिन जाकर रथ के नीचे, रथ जो पहिया है उसके नीचे मर जाना चाहता हूं। तो ऐसा विचार किया और चैतन्य महाप्रभु के पास गए। तो चैतन्य महाप्रभु जब उनको मिले तो चैतन्य महाप्रभु उनका आलिंगन करना चाह रहे थे, तो सनातन गोस्वामी दूर भाग रहे थे क्योंकि इतना पस निकल रहा था, ब्लड निकल रहा था, बदबू आ रही थी, कोई पास नहीं जा रहा था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे थे, उनका आलिंगन कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु आलिंगन कर रहे थे और चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया और महाप्रभु ने कहा कि वास्तव में आज मेरा शरीर पवित्र हो गया है तुम्हारे जैसे महान भक्त के स्पर्श लाभ से, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको डांटा, और वो डांट बहुत महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। तो दीक्षा के समय में जो भक्त है क्या करता है, आत्मसमर्पण करता है गुरु के प्रति, और जैसे शिष्य आत्मसमर्पण करता है कृष्ण उसको अपना मान लेते हैं, तुरंत किसको क्या करते हैं, कृष्ण अपना मान लेते हैं और अपने समान उसको समझते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे सनातन, तुमने जब ये दीक्षा स्वीकार की है तो तुम्हारा इस शरीर पर अधिकार नहीं रहा, इसलिए उसको मृत्यु कहते हैं। अभी ये जो शरीर अपनी प्रॉपर्टी हम समझते हैं, ये प्रॉपर्टी अभी हमारी नहीं है, वो किसकी हो गई? गुरु की हो गई। और जो प्रॉपर्टी गुरु की हो गई तो गुरु के पास अधिकार है उसको जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करने का, फिर जैसे चाहे आदेश दे सकता है उसे। हाँ, तो दीक्षा का मतलब है कि अभी मेरे जीवन, मेरा शरीर, मेरा मन और इस शरीर से संबंधित जो कुछ है उस पर मेरा अधिकार नहीं है, ये भावना आनी चाहिए व्यक्ति के जो। इसलिए प्रभुपाद 70 साल के बूढ़ी आयु हुई तभी भी उन्होंने सोचा ये शरीर मेरे लिए नहीं है, ये शरीर किसका है? गुरु का है। ये वृद्धावस्था आ भी गई तो भी किसकी सेवा में लगना चाहिए? गुरु की सेवा में लगना चाहिए, कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। 70 साल की आयु में वो चाहते हैं अमेरिका। हाँ, वो जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, इसको मैं अपने लिए इस्तेमाल करूंगा तो पापमय है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने डांटा और उनको फटकारा, सनातन ये शरीर मेरी प्रॉपर्टी है, तुमने अभी मुझे अर्पित कर दी है, तुम क्यों, क्या अधिकार है तुम्हारे पास इसको नष्ट करना चाहते हो? हाँ, तो इस प्रकार से जब ये शरीर अभी हमारा नहीं है, दीक्षा के बाद ये शरीर उसी क्षण आध्यात्मिक गुरु का हो जाता है, फिर आध्यात्मिक गुरु उस शरीर से जैसा चाहे वैसा सेवा करवा सकते हैं कृष्ण के लिए। तो जो दीक्षा है अब वो ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम कृष्ण के नजदीक जा सकते हैं। और जब हम दीक्षा स्वीकार करते हैं तो दीक्षा का वैल्यू क्या है कि हर चीज पावरफुल हो जाती है, फिर हमारे वचन भी शक्ति संपन्न हो जाते हैं, क्योंकि हम अभी किससे कनेक्ट हो गए हैं? परंपरा से। जब हम दीक्षा ग्रहण करते हैं तो परंपरा से कनेक्ट होते हैं और परंपरा के सारे आचार्यों का शक्ति हमारे पास संचारित होता है, यदि हम सिंसियर हैं, हृदय से सिंसियर भावना से सेवा करना चाहते हैं तो सारा परंपरा का ब्लेसिंग हमें मिलने लगता है और फिर हम शक्ति संपन्न हो जाते हैं और ऐसे ऐसी सेवाएं, ऐसा ऐसा कार्य करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि मैं इस कार्य को करने के लिए क्वालिफाइड हूं। हाँ, तो क्या है वो कनेक्शन? पूरी परंपरा का है। इसी कारण से गुरु के द्वारा जो मंत्र हमें प्राप्त होता है तो वो जब हम स्वीकार करते हैं, चांट करते हैं तो हम तीव्रता से शुद्ध होने लगते हैं। हाँ, दीक्षा के बाद फास्ट प्यूरिफिकेशन है। कैसे है? फास्ट। इसलिए कई बार लोग, मैं अभी 3 दिन पहले नेहरू प्लेस गया था तो वहां एक फैमिली कनेक्टेड है तो उनसे मिल रहा था, तो वो 3-4 साल से 16 राउंड कर रहे हैं और वो हमेशा सोच रहे कि नहीं मैं शुद्ध हो जाऊंगा तब दीक्षा दूंगा। फिर गुरु की आवश्यकता ही क्या है? शुद्ध हो जाऊंगा तो क्या करूंगा? दीक्षा स्वीकार करूंगा। गुरु का कार्य ही है आपको क्या करना? शुद्ध करना, उनके आदेशों से, उनके उपदेशों के माध्यम से। हाँ, तो इसलिए परंपरा के द्वारा दीक्षा स्वीकार करने से हम तुरंत ये हो जाते हैं, फास्ट हम शुद्ध होने लगते हैं और फिर कृष्णा हमारे सेवा से हमारे प्रार्थनाओं के प्रति अत्यधिक अटेंटिव हो जाते हैं। कैसे होते हैं? अटेंटिव। हाँ, जैसे एक लीला आती है, कृष्णा एक जो जनरली भगवान की जो पुकार है वो भक्तों तक नहीं पहुंचती, भगवान भक्तों की जो पुकार है वो भगवान तक नहीं पहुंचती है, लेकिन उसको पहुंचने का माध्यम क्या है? आध्यात्मिक गुरु है। जो कृष्णा जब द्वारका में थे रुक्मिणी के साथ भोजन कर रहे थे तो उस समय एक भक्त जोर जोर से रो रहा था, किसी एक टाउन में रो रहा होगा, चिल्ला रहा था, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, क्या कह रहा था बोलिए? तो कृष्णा जब बैठे थे रुक्मिणी के साथ, कृष्ण ने कहा अभी खाना नहीं है, अभी भागना है। रुक्मिणी का, अरे आपके बाकी भक्त भी तो आपको बुलाते रहते हैं और वो सीधा आपका नाम लेकर बुलाते हैं, तब आप जाते नहीं हो। तो कृष्ण कहते हैं मुझे इस भक्त के लिए जाना होगा क्योंकि ये किसका नाम लेकर पुकार रहा है? मुझे पुकार रहा है, क्योंकि भगवान ही गुरु के रूप में हमारे जीवन में हमें गाइड करने के लिए अपीयर होते हैं। इसी कारण से हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं कि साक्षात हरि त्वेना, याद है वो लाइन क्या है, साक्षात हरि त्वेना समस्त शास्त्र है। तो गुरु इनके समान है, साक्षात कृष्ण के समान है, कृष्णा नहीं है, कृष्ण के समान है। तो जब ये हुआ तो कृष्ण दौड़ पड़ते हैं। हाँ, कृष्ण ने कहा कि मैं बाद में सब कुछ कार्य करता हूं, मुझे अभी तुरंत जाना होगा, क्योंकि वो आध्यात्मिक गुरु के रूप में हम मुझे पुकार रहा है। तो इस प्रकार से कृष्ण जल्दी हमारे प्रेयर्स और हमसे अटेंटिव हो जाते हैं जब हम आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से कृष्ण की सेवा करते हैं, और फिर हमारे लिए भक्तिमय जीवन हम सरल हो जाता है। तो प्रभुपाद ने कहा कि जो गुरु कहता है कि मैं गॉड हूं, हम तो प्रभुपाद कहते कि वो गॉड नहीं है, वो कौन है, डॉग है। इसलिए गुरु के बारे में ये भी जानना चाहिए, हमें ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि गुरु कृष्ण है। तो जो मायावादी है वो ये भावना में रहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, ये बचपन से याद है सबको। तो ये मायावादियों का फेवरेट श्लोक है, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये पुराण का श्लोक है, ब्रह्मवैव पुराण या किसी पुराण का है। तो जब जो मायावादी हैं या जो व्यक्ति गुरु को भगवान स्वीकारता है सीधा, तो वो मायावादी बनता है। इसलिए भागवतम कहता है कि गुरु को हमें इतना बड़ा दर्जा या सम्मान देना चाहिए और ये जानना चाहिए कि वो कृष्ण के समान है, लेकिन कृष्ण नहीं है, क्योंकि कृष्ण के सबसे प्रिय सेवक है। तो एक शिष्य को आध्यात्मिक गुरु को हमेशा इस भावना से देखना चाहिए। इसलिए शब्द हम यूज करते हैं हर गुरु के प्रणाम मंत्र में, कृष्ण प्रेष्टाय भूतले, कृष्ण के प्रेष्ट मीन्स प्रिय है, कृष्ण के क्या है, मेरे आध्यात्मिक गुरु प्रिय है। ये एक भावना एक शिष्य के हृदय में हमेशा होनी चाहिए। इसलिए कृष्ण उद्धव को जब उपदेश देते तो कहते हैं आचार्य माम विजानीया नाव मन्ने तरे छे न मर्ते बुद्ध्या सुयत सर्वदेव मय गुरु, कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए, भगवान कहते हैं, और इस रूप में मुझे देखना चाहिए। गुरु कृष्ण रूप है शास्त्र प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्त गने। तो गुरु के रूप में कृष्ण सबके ऊपर कृपा करते हैं। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुरु का ये स्थान है। तो हम अभी सेकंड सेशन में चर्चा करेंगे गुरु की जो योग्यताएं हैं, शिष्य की योग्यताएं हैं, और कब हमें गुरु को त्याग कर सकता है कोई शिष्य, इन सब चीजों को हम थोड़े से ब्रेक के बाद समझते हैं। तो कई प्रकार के गुरुज हैं, एक है दीक्षा गुरु, एक है शिक्षा गुरु, और एक है पथ प्रदर्शक गुरु, और एक है चैत्य गुरु। कितने गुरु हो गए, तो जिनसे हम दीक्षा स्वीकार करते हैं, दीक्षा गुरु हमें परंपरा से कनेक्ट करता है। तो जिनसे हम दीक्षा आदि स्वीकार करते हैं और उनसे शिक्षा भी लेते हैं, हम दोनों चीजें, वो दीक्षा गुरु है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दीक्षा गुरु, और दूसरा गुरु है शिक्षा गुरु, जिनसे हम सीखते रहते हैं, सीखते हैं। तो दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए, और एक ही हो सकता है किसी के जीवन में, लेकिन शिक्षा गुरु क्या हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं, जिनसे हम भक्तिमय जीवन की शिक्षा ले सकते हैं। रामानुजाचार्य के 5 गुरु थे जिनसे अलग अलग चीजें वो सीखा करते थे। तो इस प्रकार से शिक्षा हम कई भक्तों से ले सकते हैं अलग अलग भक्तिमय जीवन के बारे में, तो उनको शिक्षा गुरु कहा जाता है। और एक है पथ प्रदर्शक गुरु, जिसने हमें शुरुआत में यहां पथ दिखाया, यहां हमें क्या किया जोड़ा। जैसे ध्रुव के पथ प्रदर्शक गुरु कौन थे, उनकी माँ थी, उनकी माता थी। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कोई ना कोई पथ प्रदर्शक गुरु है। और कौन सा गुरु है? चैत्य गुरु। तो चैत्य गुरु स्वयं भगवान है, कृष्ण है, जो हमारे हृदय में निवास करते हैं और हमें वो गाइड करते रहते हैं। इसी कारण से इन सब गुरुओं की आवश्यकता हमारे जीवन में है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समराइज करता हूं कि हमने ये जान लिया मनुष्य जीवन का इम्पोर्टेंस और फिर दीक्षा का अर्थ आदि और दीक्षा के कई सारे मीनिंग, दीक्षा का इम्पोर्टेंस और किस प्रकार से नया जन्म हमारा होता है। तो हम फिर परंपरा और कृष्ण से कनेक्ट होते हैं। तो फिर जो सेकंड सेशन है हमारा, उसमें हम गुरु की कई सारी योग्यताएं हैं उनकी चर्चा करेंगे बहुत विस्तार से, और उसके साथ साथ जो शिष्य की योग्यताएं हैं जो हमें करनीय है, शिष्य की जो जिम्मेदारियां हैं उनके बारे में भी हम सिखाएंगे, चर्चा करेंगे। तो दीक्षा का ये भी एक अर्थ है कि उस समय जो आध्यात्मिक गुरु हैं सारे हमारे पाप आदियों से स्वीकार करता है, इसलिए शिष्य का बहुत बड़ा जिम्मेदारी बनता है गुरु के सेवा में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद के समवेत गौर भक्त वृंद के हिताय।